रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर देश में विभिन्न कार्यक्रम हुए आयोजित। आदिवासियों की विशिष्ट पहचान और संस्कृति ही नेपाल का राष्ट्रीय गौरव है, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल का कथन। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आगामी भाद्र से शुरू करने जा रही है नागरिक नीति और नेतृत्व कार्यक्रम। गैस की कालाबाजारी नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा बाजार अनुगमन तेज, आयात बढ़ता जा रहा है, इसलिए अनावश्यक भंडारण न करने का नेपाल एलपी गैस उद्योग संघ का आग्रह। और ईरान ने अमेरिका के सामने रखी 6 शर्तें, हॉर्मुज को लेकर कड़े रुख का संकेत। अब समाचार विस्तार से। नेपाल में 32वां विश्व आदिवासी दिवस विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर मनाया गया है। दिवस के अवसर पर आदिवासी जनजाति आयोग द्वारा आज काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने कहा कि देश के संविधान ने विविधता में एकता को आत्मसात करते हुए सभी समुदायों के अधिकार और हित सुनिश्चित किए हैं। राष्ट्रपति पौडेल ने उल्लेख किया कि प्राचीन काल से निवास करते आ रहे आदिवासी जनजातियों की विशिष्ट पहचान और संस्कृति ही नेपाल का राष्ट्रीय गौरव है। राष्ट्रपति पौडेल ने कहा कि राज्य के नीति निर्माण और निर्णायक स्तर पर आदिवासी जनजातियों की सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हाल के आंकड़ों के अनुसार स्थानीय स्तर पर आदिवासी जनजातियों का प्रतिनिधित्व उत्साहजनक रूप में 36.8% है। इसी तरह नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ संघीय परिषद सचिवालय द्वारा आज काठमांडू के टोडी खेल में आयोजित मूल समारोह में उपराष्ट्रपति राम साहेब प्रसाद यादव ने कहा कि नई पीढ़ी को अपनी मौलिक भाषा, संस्कृति और पहचान का संरक्षण करते हुए शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आधुनिक प्रयोग के माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए। सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने पार्टी की ओर से सरकार में शामिल मंत्रियों को महीने में कम से कम एक बार केंद्रीय पार्टी कार्यालय में उपस्थित होकर नागरिकों और पार्टी पंक्ति के साथ प्रत्यक्ष संवाद करने का कार्यक्रम तय किया है। रासपा आगामी भाद्र से नागरिक नीति और नेतृत्व कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। पार्टी के सह महामंत्री असीम शाह ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य आम नागरिकों की आवाज को सीधे राज्य के नीति निर्माण और क्रियान्वयन के स्तर तक पहुंचाना है। कार्यक्रम के पहले चरण में एक घंटे तक आम नागरिकों के लिए खुला संवाद होगा, जिसमें मंत्री जनता की शिकायतें, समस्याएं, अपेक्षाएं और सुझाव सुनेंगे। दूसरे चरण में मंत्री, केंद्रीय समिति के सदस्य और सांसदों की संयुक्त बैठक होगी। बैठक में नागरिकों से मिले सुझावों के आधार पर समसामयिक और नीतिगत मुद्दों पर साझा रणनीति तय की जाएगी। पार्टी ने कार्यक्रम के माध्यम से मंत्रियों को नागरिकों के प्रति जवाबदेह बनाने तथा नागरिक पार्टी संसदीय दल और सरकार के बीच प्रभावी समन्वय और सूचना आदान प्रदान सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है। नेपाली कांग्रेस के सभापति गगन कुमार थापा ने कहा है कि सरकार को जिम्मेदार बनाने के लिए कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका निभा रही है। पार्टी केंद्रीय कार्यालय में आज से शुरू हुए केंद्रीय समिति की बैठक को संबोधित करते हुए सभापति थापा ने कहा कि कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल होने के कारण सरकार से सवाल करना उनकी जिम्मेदारी है। सभापति थापा ने 15वें महाधिवेशन को निष्पक्ष बनाने के लिए अग्रजों का सम्मान और सभी पक्षों को समेटकर आगे बढ़ने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। पार्टी द्वारा आयोजित विशेष महाधिवेशन पूरी तरह विधानसम्मत, आवश्यक और औचित्यपूर्ण होने का दावा करते हुए सभापति थापा ने कहा कि महाधिवेशन की प्रक्रिया और परिणाम को लेकर पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा असहमति व्यक्त किए जाने का विषय फिर से अदालत में पहुंच गया है। बैठक में सभापति थापा ने समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव और केंद्रित विषय वस्तु के बारे में जानकारी दी, जबकि महामंत्री प्रदीप पौडेल ने चर्चा के लिए विभिन्न प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। केंद्रीय कार्य समिति की बैठक कल दोपहर 1 बजे फिर से होगी। खाना पकाने वाली गैस की कालाबाजारी रोकने और आपूर्ति को सहज बनाने के लिए गृह मंत्रालय और उद्योग, वाणिज्य और आपूर्ति मंत्रालय के समन्वय में बाजार अनुगमन तेज किया गया है। भारत से गैस आयात में कोई समस्या न होने के बावजूद बाजार में कृत्रिम कमी पैदा कर कालाबाजारी किए जाने की लगातार शिकायतें मिलने के बाद अनुगमन कड़ा किया गया है। उद्योग मंत्रालय के सहसचिव नेत्र प्रसाद सुवेदी के अनुसार बाजार अनुगमन को निरंतर और प्रभावी बनाया गया है तथा गैस की आपूर्ति में धीरे धीरे सुधार आने लगा है। कृत्रिम कमी दिखाकर उपभोक्ताओं को परेशान करने और महंगे दाम पर गैस बेचने की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए उद्योग मंत्री गौरी कुमारी यादव ने गृहमंत्री सुधन गुरुंग से काठमांडू घाटी के डिपो में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती का आग्रह किया था। मंत्री यादव के आग्रह के बाद गृहमंत्री गुरुंग ने पुलिस प्रशासन को आवश्यक समन्वय और सहयोग के लिए निर्देश दिया है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। हुलाकी सड़क अंतर्गत जनकपुर भिट्ठा मोड़ को जोड़ने वाली सड़क पर महोतरी गांव पालिका एक परसा में निर्माणाधीन कुटमेश्वरी पुल लंबे समय से अधूरा पड़ा है। इसके कारण स्थानीय लोगों और यात्रियों को परेशानियों के साथ यात्रा करनी पड़ रही है। सड़क का अधिकांश निर्माण पूरा हो चुका है, लेकिन पुल लंबे समय से अधूरा रहने के कारण स्थानीय निवासी, विद्यार्थी, किसान और यात्रियों को रोजाना कठिनाइयों के साथ जोखिमपूर्ण यात्रा करनी पड़ रही है। रेडियो नेपाल के पूर्व समाचार वाचक महेन्द्र राय माझी का 49 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। पिछले 5 वर्षों से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे राय माझी का आज सुबह 7 बजे अपने ही निवास पर हृदयघात के कारण निधन हुआ। उनके परिवार ने यह जानकारी दी। विक्रम संवत 2076 साल में सेवानिवृत्त हुए राय माझी अंग्रेजी समाचार संपादक एवं वाचक के रूप में कार्यरत थे। वे संगीत क्षेत्र में भी सक्रिय थे। उनके निधन पर रेडियो नेपाल ने दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए अमेरिका के सामने 6 शर्तें रखी हैं। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहम्मद बगर जोलगादर के अनुसार जब तक अमेरिका ईरान की मांगें पूरी नहीं करता तब तक होर्मुज जलडमरू मध्य नहीं खोला जाएगा। बीबीसी के मुताबिक ईरान ने प्रतिबंधों में ढील, युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई, ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकाबंदी हटाने, ईरान के खिलाफ धमकियां रोकने और जब्त ईरानी संपत्तियों को मुक्त करने जैसी मांगें रखी हैं। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग्जी ने कहा है कि होर्मुज से जहाजों के आवागमन को लेकर ओमान के साथ बातचीत अंतिम चरण में है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि समझौता होने का मतलब जलडमरू मध्य का तुरंत खुलना नहीं है। इस बीच एक अमेरिकी अधिकारी के अनुसार ईरान और ओमान के बीच बातचीत में प्रगति हुई है और जल्द ही वाणिज्यिक जहाजों के निर्बाध आवागमन को लेकर समझौता होने की उम्मीद है। पश्चिमी कनाडा के एक दूरदराज इलाके में तेजी से फैल रही जंगल की आग का दायरा दोगुना हो गया है। आग के कारण हजारों लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा है। बीसी वाइल्ड फायर सर्विस के अनुसार बाल्ड रेंज की आग ब्रिटिश कोलंबिया के समरलैंड और ओकानागन सिमिलकामिन जिलों में 95 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैल गई है। ओकानागन सिमिलकामिन के आपातकालीन सेवा अधिकारी एरिक थॉम्सन ने कहा है कि आग की दृष्टि से संवेदनशील इस इलाके में उन्होंने इतनी तेजी से और इतने बड़े पैमाने पर आग फैलते पहले नहीं देखी। समरलैंड में लोगों को घर खाली करने का आदेश दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार शनिवार सुबह तक पूरे इलाके में बिजली आपूर्ति भी बाधित रही। आसपास के ओकानागन पीटलैंड और ओकानागन सिमिलकामिन जिलों के कुछ इलाकों में भी लोगों को घर खाली करने के आदेश दिए गए हैं। अन्य इलाकों में लोगों को संभावित निकासी के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी गई है। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने गजा को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 15 सूत्रीय शांति योजना को खारिज कर दिया है। नेतन्याहू ने कहा है कि जब तक हमास पूरी तरह और वास्तविक रूप से हथियार नहीं डालता तब तक इसराइली सेना गजा से पीछे नहीं हटेगी। आज को कैबिनेट बैठक में उन्होंने कहा कि इसराइल 15 सूत्रीय दस्तावेज को स्वीकार नहीं करता। उन्होंने कहा कि इसराइल अपने सैनिकों और नागरिकों के खिलाफ किसी भी खतरे को रोकता रहेगा। नेतन्याहू के अनुसार इस मुद्दे पर अमेरिकी अधिकारियों के साथ बातचीत जारी है और अमेरिका के कुछ प्रस्ताव इसराइल को स्वीकार्य हैं, जबकि कुछ पर वे सहमत नहीं हैं। ट्रम्प की शांति योजना में हमास का निरस्त्रीकरण, इसराइली सेना की वापसी और गजा के पुनर्निर्माण की योजना शामिल है। नेतन्याहू के रुख से योजना को एक और झटका लगा है। इसराइल के दक्षिणपंथी सहयोगियों ने भी योजना का विरोध किया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.9 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर देश में विभिन्न कार्यक्रम हुए आयोजित। आदिवासियों की विशिष्ट पहचान और संस्कृति ही नेपाल का राष्ट्रीय गौरव है, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल का कथन। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आगामी भाद्र से शुरू करने जा रही है नागरिक नीति और नेतृत्व कार्यक्रम। गैस की कालाबाजारी नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा बाजार अनुगमन तेज और ईरान ने अमेरिका के सामने रखी 6 शर्तें, हॉर्मुज को लेकर कड़े रुख का संकेत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।